शांति। हर मनुष्य को कोई ना कोई नशा होता है, चाहे कोई अपनी विशेषताओं का नशा, किसी को पद का नशा होता है, प्रतिष्ठा का नशा, सत्ता का नशा होता है, कोई ना कोई नशे का मनुष्य आदि होता ही है। कोई कुर्सी का नशा होता है। बाबा भी हम सबको बहुत बड़ा नशा चढ़ाते हैं, जिनके आगे, जिस नशे के आगे संसार के सारे नशे फीके हैं। लेकिन ये नशा बड़ा गुप्त है और ये बहुत शक्तिशाली नशा भी है, और ये नशा संसार के सब नशों से छुड़ाने वाला भी है। तो कौन सा नशा बाबा चढ़ाते हैं हम सबको? रूहानी नशा, अविनाशी नशा, अलौकिक नशा, नारायणी नशा, लक्ष्मी नशा। तो नशा ब्राह्मण जीवन का अपना ही मजा है। संगम युग का ये पुरुषोत्तम समय चल रहा है। हम सभी संगम योगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्माएं हैं, इसका भी एक अपना ही नशा है। तो समर्थ स्मृतियों का नशा अगर हम हमेशा स्मृति में रखें, चढ़ाकर रखें वो, तो जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं हलचल वाली, या कैसा भी वातावरण होता है, माया किसी भी रूप में आए, तूफान लाए, वो हमें प्रभावित नहीं करेंगे। हम उन सब से अप्रभावित रहेंगे। हमारी स्थिति अप डाउन कब होती है? जब हम अपने रूहानी नशे से दूर चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमको कौन सा नशा चढ़ाया हुआ है, किसने चढ़ाया हुआ है, किसने नशा दिया है। संसार में तो इतना एडिक्शन करते हैं, इतना नशा होता है, पूरा घर का घर बर्बाद हो जाता है, उसका फैमिली के ऊपर कितना असर होता है। लेकिन ये रूहानी नशा आबाद करने वाला है, इस नशे का भी फैमिली पर असर होता है। अगर कोई जिस्मानी नशा जो करता है और उसको ये रूहानी नशा मिल जाए, चढ़ जाए, तो जिस्मानी नशा छूटने से घर वाले लोग भी सुखी हो जाते हैं। और ऐसे ब्राह्मण परिवार में बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो बहुत नशा करती थी, महीने के लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते थे, लेकिन बाबा का बनने के बाद उनको जो रूहानी नशा चढ़ा है, वो समाज के सामने एक आइडियल पर्सन, आदर्श मूर्त बन गए कि कैसे कैसे नशा करने वाले इंसान भी भगवान के नशे से परिवर्तन हो जाते हैं। तो बाबा हम सबको रोज रूहानी नशा चढ़ाते हैं, और नशा व्यक्ति बार बार करता रहे तो ही वो चढ़ा रहता है। अगर एक बार ही करे, सप्ताह में एक बार कर लिया, तो नशा चढ़ेगा वो नहीं, बार बार करना पड़ता है। जो बहुत नशे करने वाले लोग हैं वो हमेशा ही पानी की जगह अभी वही पीते रहते हैं। तो बाबा ने हम सबको क्या पिलाया? ज्ञान अमृत। हमेशा ज्ञान बरसात होती रहती है। इस ज्ञान वर्षा में हम सब ज्ञान अमृत अगर पीते रहें, पिलाते रहें, तो ये जो अमृत है हमें हमारी जो सर्वोच्च स्थिति है उस पर पहुंचाने में बहुत जल्दी सहायक होगा। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारी बातें बताई कैसे रूहानी नशा रखना है। तो आज की मुरली में कौन सा रूहानी नशा है? बीज में भी हैं, तने में भी हैं, जड़ में भी हैं, हाँ, और रचना है, ब्रह्मा बाप की, शिव बाप की डायरेक्ट रचना है, और ब्राह्मण जड़ हैं, देवता तना हैं, हाँ, और उनसे सब शाखाएं निकलती हैं। हाँ, शुरू का पहला सेंटेंस ही है, बाबा किसको देखते हैं? आदि है, आत्माओं श्रेष्ठ और डायरेक्ट रचना है हम सभी। और कौन सी रचना है? क्या अंतर बताया बाबा ने आज? तुलना है ना, संसार की आत्माएं और ब्राह्मण आत्माओं में क्या तुलना है, अंतर है? वो इनडायरेक्ट हैं, हम डायरेक्ट हैं। और जी हाँ, आधा कल्प का भी बताया, हमारा पूरा कल्प का है, उनका आधा कल्प का है, हमारा आधा कल्प तुरंत पूरा सतयुग गोल्डन एज है, एज भी गोल्डन है, युग भी गोल्डन है, और उनका सिल्वर, सिल्वर भी नहीं है, कॉपर है, कॉपर में है, लेकिन स्थिति उनकी गोल्डन है, कॉपर एज है वो। और क्या बताया? हाँ जी, हम हाँ हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए है वो भी, हाँ, और वो डायरेक्ट याद नहीं करते हैं, अगर पूजा भी करते हैं तो इनडायरेक्ट है, शिव शंकर है ना, और हम सभी पूजा करते हैं तो डायरेक्ट शिव की पूजा शुरू करते हैं, है ना। तो ऐसे निभाने वाले, वो प्यार करने वाले हम निभाने वाले हैं, हाँ, प्यार निभाना थोड़ा मुश्किल है प्यार करना आसान होता है लेकिन निभाना मुश्किल होता है। हाँ, प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना, ब्रह्मा बाप से अगर प्यार है तो अव्यक्त फरिश्ता बनो, बाबा कहते हैं। तो ऐसे ढेर बातें हैं मुरली में, तो आज हम उन पर चर्चा करेंगे, और बार बार सारे सप्ताह भर अगर उनको हम एक एक पैराग्राफ भी लेकर उनका चिंतन करते रहें, मनन करते रहें, थोड़ा धीरे धीरे समझने आती है मुरली, तो धीरे धीरे वो संस्कार बनते जाते हैं, नहीं तो मुरली कोसों दूर रह जाती है हमारे से, पता नहीं चलता कि ये मुरली पढ़ी भी थी हमने, है ना, ये सुनी भी थी। तो ऐसे बाबा के इतने ऊंचे परम पवित्र महावाक्य हैं, बाबा कहते हैं इसके लिए बुद्धि भी सोने का बर्तन चाहिए, क्लियर बुद्धि, प्लेन बुद्धि चाहिए, प्लान तो बर्त बनाते हैं लेकिन प्लेन बुद्धि वो करनी बनाते हैं, मिक्सचरिटी है संकल्पों की। तो ऐसे बाबा के महावाक्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने में, अपना संस्कार जो हमारी नेचुरल नेचर बन जाए, तो लंबे समय का पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बहुत काल, अचानक और एवरेडी। तो लंबे समय का अभ्यास होगा तो हम एवरेडी बन सकते हैं। तो अचानक जो आने वाली परिस्थितियां हैं, आपदाएं हैं, समस्याएं, मुश्किलें, माया के अलग अलग रूप, तो उनमें भी हम अचल, अडोल, स्थैर्य में रह सकते हैं। अगर लंबे समय का अभ्यास नहीं है तो फिर धीरे धीरे कोई भी समस्या आएगी तो बस उसी परेशानी में उलझ जाएंगे। इसलिए लंबे समय का अभ्यास है ना बड़ा जरूरी है। तो आज की मूली में हम चर्चा करेंगे, तो फरिश्ता बनने के लिए कौन सी आकर्षण नहीं होनी चाहिए। तीन आकर्षण बाबा ने बताई, उस आकर्षण का रिश्ता नहीं होना चाहिए। कौन सी? देह की दुनिया, देह के संस्कार और अपनी देह। पुरानी दुनिया, देह के संस्कार और देह, है ना। तो ये सारा बड़ा सूक्ष्म पुरुषार्थ है। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक देह के अंदर ही हम रहते आए हैं, और उससे मोह ना हो, ये हो सकता है? हो सकता है। कितना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दे दिया है, है ना। 5000 वर्ष जिस देह के अंदर आत्मा अनेक जन्मों का पाठ बजाते 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 देह के साथ अटैच हो गए एकदम, है ना, जैसे एक हो गए हैं दोनों। अब उसको अलग करना थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। लेकिन बाबा हमको समझ, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, उसलिए उससे डिटैच होना आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, है ना। संसार में भगवान को ढूंढने के लिए कितने शास्त्र पढ़ते हैं, या सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, आत्मा की अनुभूति करने के लिए कितना वर्षों उस पेड़ों के नीचे साधना करते रहते हैं, शमशान घाट में करते हैं, कितने शास्त्र पढ़ते रहते हैं। लेकिन बाबा ने आते हम सबको बताया, तुम आत्मा हो। सिंपल तरीका, तुम आत्मा हो, शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है, तुम मेरे बच्चे हो। तुमने 5000 वर्ष पार्ट बजाया, अब पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा पूरा हुआ, फिर वापस घर जाना है। लेकिन वो अनुभूति करने के लिए बाबा ने हम सब के अंदर शक्ति भर दी, याद की शक्ति, याद का बल आज के वरदान में था ना। अगर याद की शक्ति है तो क्या होगा? खुशी की प्राप्ति। और हाँ, जहां मन को लगाना चाहे, बुद्धि को लगाना चाहे, वहां लगा सकते हैं। चाहे परिस्थितियां हलचल की हो, चाहे वातावरण तमो प्रदान हो, चाहे माया के जितने भी संकल्प आए, तूफान आए, लेकिन क्या होगा? याद की शक्ति से तुम जहां बुद्धि को लगाना चाहे जा सकते हैं, तूफानों को भी तूफान बना सकते हैं। और उसके लिए कौन सी पावर चाहिए? कंट्रोलिंग पावर। तो सारे दिन में चेक करना है कि हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर जितनी होनी चाहिए उतनी है, या करना कुछ चाहिए हो कुछ रहा है, चले थे कुछ करने, जाना था कहीं और पहुंच गए कहीं। तो छोटे छोटे अभ्यास करने हैं मन को कंट्रोल करने के, चाहे वो ज्ञान में, चाहे भोजन पर, चाहे मेडिटेशन में बैठते हैं तभी, चाहे देखने में, है ना। जैसे यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से हम डाइनिंग में जा रहे हैं, तो छोटा सा अभ्यास करना कि किसी को देखना नहीं हो वहाँ तक पहुँचते हुए, नहीं तो ये आंखें ना किसी को ढूंढती रहती हैं, अज्ञात खोज रहती है, एक कोई लेना देना नहीं होता है, कोई जा रहा है, ये कौन जा रहा है, ये कौन जा रहा है, ये कौन जा रहा है। अब उसको फायदा नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी एनर्जी इन आंखों से जाती है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को हम इन आंखों से देखते हैं तो उसके बारे में संकल्प तो चलता ही चलता है। अगर उसके प्रति हमारी ऐसी वैसी भावनाएं हैं, कोई नेगेटिव भावनाएं, तो सीधा नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी, और शुभ भावना है तो शुभ भावना ही प्रवेश करेगी। लेकिन एंजी आत्मिक दृष्टि की, आत्मिक वृत्ति की, आत्मिक कल्याण की अगर वो भावना है तो वो होगी। लेकिन देखने से, बार बार हम इधर उधर देखने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए जिधर हमको जाना है उधर ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो पुरानी दुनिया, अब बाबा ही हमारी दुनिया बन गया तो पुरानी दुनिया में रखा क्या है? पुरानी दुनिया से वैराग्य। वैराग्य वास्तव में ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया, नहीं, वैराग्य वास्तव में समझ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग है वो। ये नहीं है कि हमने व्यर्थ सोचना छोड़ दिया, बुरा देखना छोड़ दिया, वो तो छोड़ा ही, लेकिन हमको उसकी समझ आ गई, इसलिए अभी हमारे से स्वतः छूट गया वो छोड़ा नहीं हमने, उसकी हमको समझ आ गई कि ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानकारक हैं, हानिकारक हैं, इसलिए वो स्वतः हो गया, क्योंकि जन्म जन्म से हमने भोगा हुआ है। वैराग्य नहीं है कि हमने बुरी चीज़ें खानी छोड़ दी हैं, वो समझ आ गई ना। अब जलेबी मीठी मीठी होती है, बाजार की जलेबी खाते हैं हम, समझ आ गई ना, क्योंकि उस भोजन के पीछे बनाने वाले का भी कितना हिसाब किताब होता है। तो हर चीज़ की समझ आई, त्याग भी स्वतः समझ के साथ आ गया। ऐसा नहीं हमको मैं सुमान ले लूँ मैं बेहद का वैरागी हूँ, नहीं, हर चीज़ समझ के साथ सुमान में अपने आप ही परिवर्तन हो जाती है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान का सुमान ले लेते हैं, तो खाली उसके नहीं, हमको समझ आ गई है कि हमारी शक्तियाँ जो वेस्ट जा रही थी उनको कंट्रोल करना, अभी हमको समझ आ गई है कि हम सुप्रीम अथॉरिटी के संतान हैं, सर्वशक्तिवान का साया, उसकी छत्रछाया हमारे ऊपर है, इसलिए वो सर्वशक्तियाँ काम करने स्वतः लगती हैं, वो हमारा सुरक्षा कवच बना के रहती हैं। जैसे कोई भी VIP लोग होते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए कितने सारे लोग होते हैं, कितना बड़ा लवाजमा आता है साथ में, है ना। तो हम सभी कौन है, दुनिया के VIP हैं, तो हमारा सुरक्षा कवच कौन है, परमात्म शक्तियाँ हैं, स्वयं बाबा हमारी छत्रछाया बनकर चल रहा है। महसूस करने बाबा कहते तुम मेरे आह्वान करो, दिल से बोलो बाबा आ जाओ तो मैं हाजिर हूं। तो बाप बच्चों के लिए बना हुआ है ना। तो ये तीन चीजें, अगर हमारा आकर्षण है पुरानी दुनिया से, पुरानी संस्कारों से, देह से, तो क्या होगा, फरिश्ता बन नहीं सकते है। बाबा कहते हैं बच्चे तो कहते हैं प्यार तो बहुत है, लेकिन समान बनकर दिखाओ। बाबा से प्यार अर्थात बाबा की पढ़ाई से प्यार, बाबा से प्यार अर्थात बाबा की सेवा से प्यार, बाबा से प्यार अर्थात बाबा के यज्ञ से प्यार, बाबा से प्यार अर्थात बाबा के परिवार से प्यार, और बाबा से प्यार अर्थात 50 बातें बताओ, श्रीमत से प्यार, और बाबा से प्यार अर्थात मुरली से प्यार हो गया, मुरली से तो प्यार कर लिया पहले, और है जी बाबा के घर से प्यार, सेवा केंद्रों से प्यार, और बाबा के बच्चों से प्यार, जो भी यज्ञ की चीज है उस हर चीज से प्यार, उस हर चीज की संभाल। तो बाबा से प्यार अर्थात बाबा की विशेषताओं से प्यार, बाबा से प्यार अर्थात बाबा के गुणों से प्यार, बाबा की शक्तियों से प्यार, बाबा के त्याग से प्यार, बाबा की मिलनसारिता से प्यार, जितने भी बाबा के कदम हैं उन कदमों से प्यार, है ना। तो हमको देखना है कि जो बाबा के संस्कार है उन संस्कारों से प्यार हमारा। बाबा के संस्कार कैसे हैं, उच्च कोटि के संस्कार हैं, रॉयल संस्कार हैं, सुख देने के संस्कार हैं, शांत रहने के संस्कार हैं, अचल अडोल रहने के संस्कार हैं, त्याग के संस्कार हैं, दातापन के संस्कार हैं, हैं जी ज्ञान रैम दिल के संस्कार हैं, हाँ जी हर आत्मा को साक्षी होकर देखकर साकाश देने के संस्कार हैं, खाली देखना नहीं साकाश भी देना पड़ेगा साथ साथ में। हाँ तो वो सब चीजों से प्यार चाहिए, ये नहीं सोचना मेरा ब्रह्मा से बहुत प्यार है या शिव बाबा से प्यार है, अगर प्यार है तो उनके जैसा बनना पड़े, है ना। कोई हमको कहे कि हम किसी को कोई हमारा आपसे बहुत प्यार है और बात हम एक भी नहीं मानते उसकी, तो कैसे मानेगा कोई भी। हाँ भगवान को सब मानते हैं, भगवान की कितनी मानते हैं वो नंबरवार हो जाता है ना। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा से प्यार अर्थात उसकी शिक्षाओं से प्यार, तो लिस्ट बनानी है ऐसे, बुद्धि को ना चलाना, चिंतन चलाना, क्योंकि अगर हमारा चिंतन नहीं चलता ना तो बस एक दो सेंटेंस में रुक जाते हैं, बस वो बुद्धि को दौड़ाना है, काम देना है, नहीं तो निष्क्रिय हो जाती है, काम ही करती, डेड हो जाती है एकदम, तो जबरदस्त इसको धक्का देना पड़ता है। तो और क्या कहा बाबा ने, तुम्हारा टाइटल कौन सा है? बाबा ने टाइटल कौन सा दिया? क से शुरू होता है, ग से खत्म होता है, कर्मयोगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा टाइटल क्या है? कर्मयोगी। कर्मयोगी अर्थात इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं। कर्मयोगी अर्थात कर्म करते बाबा की याद, स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्व सेवा करें तो उसमें अलवेले हो जाएं, दूसरों की सेवा में करें तो स्व की सेवा में अलवेले हो जाएं। और अलवेले होने से क्या होता है? फिर तीन चीजें आती हैं। अगर सेवा में अलवेलापन है, चाहे स्व की सेवा में चाहे दूसरों की सेवा में, तो तीन चीजें आती हैं, अयथार्थ और वहां फिर मेहनत है, थकावट है, खर्चा है। ये सेवा की परिभाषा, सेवा की परिभाषा अर्थात मेवा खाने वाले, उसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होना चाहिए। हाँ, वो निर्माणता के बीज हैं, शुभ भावना शुभ कामना के बीज है, निमित्त निर्माण और निर्मल जो है। तो स्व सेवा और सर्व की सेवा अगर हम सच्चे मन से कर रहे हैं तो फिर ना हमको मेहनत लगेगी, ना थकावट होगी, ना खर्चा होगा, है ना। आप देखो कभी भी अगर कोई उदासी आ रही ना तो सेवा में लग जाओ। हमारे मनोहर दादी जी कहा करते थे, अगर कभी भी मूड ऑफ हो जाता है तो कहीं बर्तन मांजना शुरू कर दो, यज्ञ के झाड़ू लगाना शुरू कर दो, खुशी आ जाएगी अपने आप, क्योंकि मन प्रत्यक्ष फल तुरंत मिलेगा, खुशी उसका असर होता है। कहीं कोई गाइड ही करना शुरू कर दो, अच्छा वो ही नहीं है तो आपस में ज्ञान चिंतन करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, अपने गीत बनाना चालू कर दो, बाबा से बात करना शुरू कर दो, बाबा को पूछो बाबा ने, बाबा आज आपने मुझे सवेरे सवेरे क्या बताया था, बाबा के कमरे में बैठ के बाबा के चित्र के आगे बाबा से पूछो कि आज मुरली में क्या सुनाया था आपने। तो धीरे धीरे टचिंग होगी, वो अपने आप टचिंग होगी, एक एक शब्द आएगा धीरे धीरे, फिर उसके आगे लंबी लाइन लग जाएगी अपने आप, और अपने आप खुशी का पारा कितना ऊपर चढ़ जाएगा, साथ में आसमान पर चला जाएगा, खुशी का पारा चढ़ता जाएगा फिर। और ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुश रहने वाले, मूंझने वाले नहीं है, छोटी छोटी बात में मूंझते रहे नहीं, बातें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन बाबा कहते तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए, जान भले चली है लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। ब्राह्मण जीवन का सार ही क्या है? खुशी। अगर खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन कैसा है? फिर तो संसार वाले लोगों की तरह होगी, हमारे और फिर उनमें क्या फर्क हुआ? तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुशियों में रहने वाले, तो प्रत्यक्ष फल है क्या है? खुशी। किसमें? सेवा में, अर्थात खुशी का मेवा खाने वाले, अर्थात स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस, अलविला नहीं, मेहनत मुक्त, कोई खर्चा नहीं और कोई थकावट नहीं। लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा प्लान बनाना है। कैसे? प्लेन बुद्धि होके प्लान बनाएंगे सेवा का, तो अगर उसमें मिक्सचरिटी है तो क्या होगा? तो सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन संकल्पों की मिक्सचरिटी हो जाती है ना। एग्जाम्पल बताया बाबा ने, कौन सा ये संकल्प? सेवा के संकल्प क्या हैं? रत्न है, जड़ित है ना, रत्न है जी। अगर उसमें नौ रत्न है और एक पत्थर डाल दिया जाए क्या हो जाएगा? मान लो हमने आपको हीरे दे दिए, नाव तो हीरे दे दिए और अच्छे हैं वो, आपको भी लगा ठीक ठाक है, और लास्ट में दे दिया डुप्लीकेट, और आपको बाद में पता चला कि ये तो डुप्लीकेट है, तो आप नाव सोचेंगे नाव भी डुप्लीकेट ही दिए होंगे, सारा काम पानी में चला गया। इतना मेहनत करने के बाद अगर थोड़ा सा भी दाग लग गया तो सारा पुरुषार्थ गया। इसलिए बाबा के कहते चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो थोड़ा भी दाग हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। एक आइडियल पर्सन, आदर्श व्यक्ति, लगा कि वास्तव में सच में फरिश्ते हैं। जैसे सफेद कपड़े पर अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो क्या दिखेगा? वो दाग की तरफ ही ध्यान जाएगा, पूरा इतना कपड़ा सफेद नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमारी लंबे समय से संस्कार ही अवगुणों को देखने के हो गए हैं। हाँ, जो होली अंश वाला, होली अंश बुद्धि वाला होगा वो तो सफेद कपड़े को ही देखेगा, और जो होगा बगला बुद्धि उसको काला दाग ही दिखाई देगा, है ना। इसलिए बाबा ने कहा 5% तो क्या माफ नहीं, 5% ऐसे लोग मिलेंगे जो सदा संतुष्ट नहीं होंगे, सर्टिफिकेट देने में संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं कोई कोई तो जितना भी आप संतुष्ट कर लो होंगे ही नहीं वो संतुष्ट। कहा जाता है अपने शरीर की चमड़ी उतार के उनको जूता भी पहना दो तो भी संतुष्ट नहीं होंगे, इसलिए 5% कम कर दिया ना। अभी थोड़ा परसेंटेज बढ़ जानी चाहिए, ये तो पहले बोला था मैं 92 की उम्र ली है। हाँ, 5% का जो कड़ा हिसाब किताब है, तो हमको अब हिसाब किताब नया नहीं बनाना है। और हिसाब किताब को चुप तो करने की सबसे सहज विधि है एक चुप सौ सुख, क्योंकि कदम कदम पर बहुत सारे भाई बहन ऐसे मिल जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, कोई अच्छा ही बोलेगा कोई खराब ही बोलेगा। और वास्तव में किसी का दोष नहीं है ये, क्योंकि सबकी मेंटेलिटी अपनी अपनी है, सबकी सोच अपनी अपनी है, सबके संस्कार अपने अपने हैं, पार्ट अपना अपना है। अरे भाई परिवार है ना, तो परिवार में सभी उंगलियां तो बराबर है नहीं है, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। अब किसी को चोट लग गई है तो पीड़ा तो होगी, पीड़ा में चिल्लाएगा वो। तो उसी तरह हमने भी कहीं ना कहीं हमारे बोल से किसी को चोट लगी हुई है, अब पीड़ा तो दी हुई है हमने, तो चिल्लाएगा कोई ना कोई सामने से। लेकिन चुप रोकर हमको कड़ा हिसाब किताब वो कंप्लीट कर देना है, और उनके प्रति भी शुभ भावना शुभकामना रखनी है, है ना। तो ऐसे बाबा के हम सभी रूहानी बच्चे हैं, बाबा के तो तुम जड़ों में हो, जड़ अर्थात गुप्त, बाहर नहीं। अगर बाहर निकलने का प्रयास किया तो लोग लकड़हारा काट के ले जाएगा और जला देगा कहीं भी। तो ये गुप्त पुरुषार्थ है। बाबा कहते जड़ों से क्या होता है, पानी कहाँ डालते हैं, जड़ों में, एक एक पत्ते को नहीं डालते हैं। तो हम इस संसार के कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, तो हमको रोज अपने आप को स्वयं को ज्ञान का जल डालना है, परमात्म शक्तियों का जल डालते रहना है, ताकि हमारे संकल्पों की ऊर्जा, हमारे संकल्पों की शक्ति पूरे संसार की आत्मा रूपी पत्तों को पहुंचती रहे। अगर हमने, हम जड़ हैं, हमने अपने आप को पानी दिया ही नहीं, तो हम खुद ही सूखे रहेंगे, तो पेड़ भी सूखा रहेगा। तो अपने आप को चार्ज करना है। बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी संपन्नता की कमी के कारण ही विश्व परिवर्तन का कार्य रुका हुआ है। हम खुद ही नहीं संपन्न हो पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद को हरा भरा नहीं रखवा रहे हैं, हम खुद ही सूखे वृक्ष की तरह हैं। तो संसार भी सूखा होगा ना, पत्ते भी सूखे रहेंगे। तो हमें स्वयं को चार्ज करना है। सारा पुरुषार्थ वास्तव में स्वयं को परिवर्तन करने का ही है। दूसरे तो परिवर्तन अपने आप ही है, सेवा तो अपने आप होती रहती है। सबसे बड़ी सेवा सो की सेवा, सो की सेवा है तो अन्य आत्माओं की सेवा करने का स्वतः ही संकल्प आएगा। अन्य आत्माओं की सेवा करने के सिवाय हम रह नहीं सकते हैं। अगर हमने सो की सेवा यथार्थ से ठीक सीख ली, तो हमने गुलाब जामुन खा लिया और हमारे पास बहुत सारे गुलाब जामुन है, तो दिल क्या होगी, परिवार को भी खिलाऊं, हमारे पास है ही नहीं तो खिलाएंगे क्या किसी को। तो हमने बाबा का ज्ञान समझ लिया, बाबा की अनुभूति कर ली, उसके प्यार का स्पर्श महसूस कर लिया हमने, उसका उसकी शक्तियों की महसूसता ले ली, स्वयं को चार्ज कर लिया, वो अनुभूति कर ली, तो दूसरों को अनुभूति कराए बिना रह नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सर्विसेबल बच्चों की नींद फिट जानी चाहिए। तो स्वयं को परिवर्तन करने का सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, यथार्थ। क्या प्रधान था, यथार्थ, हाँ पढ़ लो पढ़ लो, यथार्थ योगी यही था ना, हाँ, कंट्रोलिंग पावर द्वारा। तो तूफान को भी तोहफा, तो यथार्थ पुरुषार्थ हमारा होगा तो दूसरों को भी हमको सुख देने का संकल्प सोता आएगा। अगर पुरुषार्थ में गड़बड़ है, मिक्सचरिटी है, मान शान की इच्छा है, तो फिर वो सेवा फलीभूत नहीं होगी। सामने वाला भी हमको मान शान दे के चला जाएगा, लेकिन वो वही खाया पिया और खत्म। बाबा कहते हैं अलग अलग बच्चे होते हैं, एक हैं कमाने वाले, दूसरे हैं कमाकर थोड़ा जमा करने वाले, तीसरे हैं कमाकर दूसरा बांटने वाले। तो हम कौन से बच्चे हैं, कमाया और खाया। कल की मुरली में था ना, एक बाबा ने बड़ा कड़ा शब्द कह दिया था, क्या बाबा के बनने के बाद भी एक टाइटल दिया था, हाँ क्या कहते हैं उनको अवधूत तो बाबा देखो कितना माना, क्यों कहते, क्यों कहते बाबा, नहीं तो घर में बच्चों को ऐसे थोड़ा कहते हैं, लेकिन बाबा की शुभ भावना कामना है, इनके दिल को थोड़ी ठेस लगनी चाहिए, थोड़ा दिल इनका दुखना चाहिए, नहीं तो वही चलते रहते हैं, ब्राह्मण बन गए, बाद में जो करना चाहिए अपने कर्तव्यों के प्रति हम बेमुख हैं, तो फिर बाबा हमारे से क्या अपेक्षा रखेंगे। तो फरिश्ता बनना अर्थात इस जीवन में मुक्त अवस्था का अनुभव करना है, स्वतंत्रता। फरिश्ता अर्थात, हाँ वो जो तीन बातें बता दी है वो, और फरिश्ता अर्थात सदा हल्के, सदा न्यारे प्यारे, फरिश्ता अर्थात सभी का है वो, फरिश्ता अर्थात उसके सब हैं और वो सबका है, किसी के प्रति कोई ऐसी वैसी भावना नहीं। हाँ फिर भी 5% बात आ जाती है उसमें, कोई को तो आएगा, लेकिन अंत में वो 5% भी पूरे हो जाएंगे, जाएंगे कहां बेचारे, क्योंकि अंत में उन 5% आत्माओं को भी रियलाइजेशन होगा कि मैं अपने संस्कारों से दुखी था, कि ये तो ठीक थे, है ना। जैसे घरों में भी क्या होता है, लंबे समय से माता या भाई ज्ञान में चलते रहते हैं, घर वाले सहयोग देते नहीं है, है ना, और मन में तो उनको पता होता है ना कि हम तो गलत कर रहे हैं, ये तो ठीक है, और अंत में मान लेते हैं हाँ आप ही ठीक थे, आप ही हमारे गुरु, फिर धीरे धीरे ज्ञान में चलने लग पड़ते हैं, लेकिन तब तक टाइम निकल जाता है, वर्षा जितना चाहिए उतना मिलेगा नहीं, पद कम हो जाएगा। उसी तरह ब्राह्मण जीवन में भी, ब्राह्मण संसार में भी अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो फिर अंत में संतुष्ट तो जबरदस्ती होना पड़ेगा, लेकिन वर्षा नहीं मिलेगा उसमें उतना, और वो बाद के वर्ष की बाद की बात, लेकिन इतना जो टाइम पीरियड है, जो खुशी का टाइम है, वो तो खत्म हो गया ना, जो अतीन्द्रिय सुख का, जो सबसे दुआएं अर्जित कर लेनी चाहिए थी, वो दुआएं तो नहीं मिलेंगी ना, है ना। 10 बोल ठीक बोले और एक बोल खराब बोल दिया तो क्या होगा फिर। तो ऐसे थोड़ा बहुत जीवन में उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, लेकिन हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि हम ऐसा ना करें, कि ऐसा कर्म ना करें कि हमें देखकर दूसरा को उल्टा सुलटा काम करना शुरू कर दे। बाबा ने कहा कर्म तो छोड़ा, ऐसा संकल्प नहीं आना चाहिए, कितनी सूक्ष्म साधना है, संकल्पों तक की बात है ये। इसलिए जैसे जैसे हम इस पुरुषार्थ मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो माया की भी सूक्ष्म बातें हमको महसूस होने लगती हैं, उनका पता लगता है, नहीं तो अगर पुरुषार्थ साधारण है ना तो फिर छोटी मोटी बातों को पता नहीं चलेगा, वो सूक्ष्म पाप हमारे ऊपर और इकट्ठे होते रहेंगे और वो ही हमारी खुशी को नष्ट करते रहेंगे, सारे दिन में निराशा छाई रहेगी, उदासी रहेगी, थकावट रहेगी, मुश्किल लगेगा, मजा नहीं आएगा, ये सब चीजें क्या है, ये वास्तव में सजा मिल रही है हम सबको। धर्मराज उधर नहीं है, धर्मराज तो अभी हमारे पीछे लगा हुआ, किस रूप में है, हमारे खुद के ही कर्म धर्मराज के रूप में लगे हुए हैं जी, अपने विचार ही धर्मराज के रूप में है। आज बाबा ने बोला ना, अभी तो सतगुरु के रूप में है, बाप के रूप में लाड कोड कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में धर्मराज के रूप में वो, फिर बाबा क्या होगा, अभी तुम बच्चे अगर पुरुषार्थ के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं हुए तो बाद में बाबा को तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इसलिए 10 गुना अंडरलाइन करो, एक गुना भी नहीं बोला, 2 गुना में सीधा ही 10 गुना, कितना अटेंशन रखने की जरूरत है। तो कदम कदम पर हमको बहुत अंडरलाइन करने की जरूरत है ना। और क्या कहा बाबा ने मुरली में, उछालो थोड़ा कलश को, क्या क्या कहा, प्रकृति आपकी दासी है, इंतजार कर रही है, वो दिल व जान से के सेवा करेगी वो, कब, जब हम संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएगी। तो पहले रूहानी नशे की बात थी मुरली में, हम इस संसार की आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना है, और डायरेक्ट रचना अर्थात तो ये एक विजन क्रिएट करना है कि मैं कल्पवृक्ष की जड़ों में बैठा एक परम तपस्वी हूँ, परम पवित्र तपस्वी हूँ, है ना, और पवित्रता के सागर बीज रूप बाप के साथ कंबाइंड हूँ, और महसूस करना जैसे झाड़ मेरे सिर पर है ना, और उस झाड़ को सारी परमात्म शक्तियों की लाइट जा रही है ना। जितने भी मुरली में महावाक्य होते हैं उसको योग में परिवर्तन कर देना, बस उसी एक विजन को क्रिएट करते हुए उसी में 5 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, तो अपना मन बुद्धि एकाग्र होने लगेगा और महसूस होने लगेगा, और बाबा की शक्ति महसूस होगी, क्योंकि हमने अपने आप को काम दे दिया बाबा की श्रीमत के अनुसार। फिर बाबा ही देखेगा बच्चा मेहनत तो कर रहा है ना, वो फल की अनुभूति कराएगा कराएगा। तो हम बाबा के कौन से बच्चे हैं, कल्पवृक्षी जड़ों में ब्राह्मण तपस्वी आत्माएं हैं, देवताएं तो फिर तने में दिख रहे हैं, लेकिन जड़ें अगर हिल जाएं तो सारा वृक्ष गिर जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की सारे संसार में कितना महत्व है, हर काम के लिए ब्राह्मण चाहिए, है ना। तो और देवताएं तो तने में है वो, और देवताओं से आगे फिर दूसरे अलग अलग धर्मों की, वो है धर्म पिता है, और हम हैं परम पिता के बच्चे। हम डायरेक्ट हैं, वो इनडायरेक्ट हैं। वो अगर राम को भी पूछते हैं तो राम के भक्त हैं, वो भी बाया बाया है। वो राम भी शिव को पूछते हैं लेकिन वो राम को है, ऐसे शिव और शंकर की बात है, है ना। और सतो प्रधान प्रकृति है, सतो प्रधान युग है, तो हमारा पूरा कल्प ही है, सारा पार्ट है, और उनका आधा कल्प है। तो ये रूहानी नशा रखना है कि मैं झाड़ में नीचे बैठा हुआ परम तपस्वी हूं, जो मैं संकल्प कर रहा हूं उस संकल्प का प्रभाव पूरी सृष्टि की आत्माओं को, हर आत्मा तक पहुंच रहा है। हर आत्मा रूपी पत्ता मेरे संकल्पों से हरा भरा हो रहा है, खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। आत्माओं में एनर्जी आ रही है, शक्ति आ रही है, ताकत आ रही है, उनमें पवित्रता आती जा रही है। वो एक नए जीवन का उमंग उसार का संचार हो रहा है, नए नए संकल्प करने हर पत्ते तक पहुंच रहा है। उस वृक्ष की मैं फाउंडेशन हूं, मैं जड़ हूं, आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं। जो मैं संकल्पों का भोजन अब स्वयं आत्मा को दूंगा, उन संकल्पों का भोजन ही हर एक पत्ते को जा रहा है। इसलिए कौन कौन से संकल्पों का हम भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, ऐसे दृष्टि से ही भोजन ग्रहण करते हैं। कौन सी हमारी दृष्टि है, कौन सी हमारी वृत्ति है, कौन सी हमारी सोच है, कैसे हमारी कृति है, हर चीज से प्रभावित आत्मा, संसार की सब आत्माएं होती हैं। जैसी हमारी वृत्ति है वैसी सृष्टि बनेगी। तो ये नशा रखना है, हम इस सृष्टि के बीज रूप आत्माएं हैं, जड़ों में बैठे निरंतर तपस्या में रहते हैं। हमारी तपस्या से ही संसार की क्या हो रही है, कायाकल्प हो रही है, संसार बदल रहा है, ठीक है। तो ये रूहानी नशा रखना है। बाबा ने कहा नशा हमेशा रहता है या कभी कभी, 100% रहता है या 50%, कितना रहना चाहिए? लेकिन होता क्या है, कभी कभी 100 से आगे भी निकल जाता है, नहीं कि पीछे रहता है। बाबा कितने रहने, तो सदा चाहिए 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 शब्द है ना, बाबा भी चाहिए चाहिए करते हैं, तो चाहिए चाहिए बाबा कहते कब तक, सदा एक रस होना चाहिए। आखिर बाबा को भी चाहिए शब्द बोलना ही पड़ा है ना। बाबा बाबा ने कहा ना, बाप को भी चाहिए शब्द तो बोलना ही पड़ गया आखिर। तो निरंतर एक रस और नशा होना चाहिए, है ना। तो चैलेंज करते हैं संसार वालों को भी, तो बाबा के बाप भी तुम बच्चों को चैलेंज करते हैं कि हमेशा नशा एक रस चाहिए। फिर ऐसा भी समय आएगा, कैसा, बाबा ने कहा ऐसा भी समय आएगा कैसा, हाँ बाबा फिर करने वालों से मिलेंगे, बनने वालों से मिलेंगे, कहने वालों से नहीं। कि हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, केवल कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो अंत में वो ही होगा, और अंत कब है, वास्तव में वो अभी का समय है, अभी ही अनुभव होगा। अभी अगर हम बाबा के कहने के अनुसार करने लग पड़ेंगे तो हमको आभास होगा कि बाबा हमारे इर्द गिर्द हमारा चक्कर लगा रहा है। जैसे बाबा ने कहा ना, तुम शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो, अंत में तुम हर एक बच्चा शांति का टावर बन जाएगा, बाप तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। तो वो समय महसूस करने का अभी है, कि जैसे स्वयं स्वयं शांति का सागर अवतरित हो गए, मुझ आत्मा की परिक्रमा कर रहे, महसूस करना हो, नए नए संकल्प क्रिएट करने हैं। बाबा ने बताया ना, नवीनता चाहिए तपस्या में, नवीनता मुरली में था ना, तपस्या में नवीनता। कैसी तपस्या चाहिए, फोर्सफुल तपस्या चाहिए, पुरुषार्थ में स्टिक चाहिए, है ना। तो नवीनता चाहिए, नए नए संकल्प करने हैं, क्रिएट करने हैं, और फिर देखना है। तो मुरली में बहुत सारी बातें हैं, हम शॉर्ट में फिर से इनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात है आकर्षण मुक्त बनना है, है ना। अभी 21-22 बातें रिवाइज कराएंगे। सबसे पहली बात आकर्षण मुक्त, और वो मुरली में ढूंढना है कौन सी, तीन बातों से बताया हुआ ना। दूसरा है बंधन मुक्त, है ना, मुक्त और जीवन मुक्त। तो देखना है कौन सी बातों से मुक्त, कौन से बंधन है जिनसे हम बंधे हुए हैं। आकर्षण अलग चीज है, बंधन अलग चीज है। आकर्षण टेम्परेरी हो सकते हैं, लेकिन बंधन लंबे समय हो सकते हैं। बंधन सुनहरे भी हैं, तो बंधन लोहे की जंजीर वाले भी हैं। तो आकर्षण मुक्त, दूसरा बंधन मुक्त, तीसरा संतुष्टता हमारी कितनी है वो देखना है। चौथा दुआओं का सर्टिफिकेट हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी दुआएं हैं स्वयं की दुआएं इकट्ठी करना। और स्वयं की दुआएं कैसे मिलेंगी? जब हम बाबा की पढ़ाई के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। थोड़ा सा भी हम पुण्य करेंगे, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? काल की मुरली में था, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? काल की मुरली में था ना, बाप को याद करना सबसे बड़ा पुण्य है। याद आया कि नहीं? देखो सबको कितनी खुशी आ गई अभी, क्योंकि सबको याद आ गया अभी। तो ये दुआएं मिल जाती है ना जी। तो दुआओं का स्टॉक जमा करना है। चौथा है, अगर मिलना है तो बाप समान मरण कर मिलो। मिलन में, उस मिलन में ही मजा है। आज के मूल्य में था ना, समान मिलने में जो मजा है वो दूसरे में नहीं है। तो बाबा से कैसे मिलना है? जैसे मेरा बाप, मैं से बैठा हूं। जैसे वो चमकता हुआ स्टार है, मैं भी उसके सामने स्टार बैठा हूं। जैसे उसकी सारी शक्तियां, मैं भी उसके सामने शक्तिशाली आत्मा हूं। वो सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर। इक्वल मिलना है। दोस्ती किसमें आती है? जो बराबरी का होता है उसी में मजा आता है ना। तो समान होकर मिलन मनाना है हमेशा बाबा से। नेक्स्ट, फरिश्तेपन का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा ना, फरिश्ता बनना है तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो फरिश्ता बनो। तो बार बार फरिश्ता बनकर फरिश्तेपन का अभ्यास करना है। मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। फिर उसके आगे विस्तार करो, फरिश्ता कैसा होता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है, वो क्या करता है, वो क्या खाता है ना, वो सब चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट, शुभ भावना शुभ कामना सबके प्रति रखनी है। और शुभ भावना शुभ कामना का बीज है निमित्त भाव, निर्माण भाव। और नेक्स्ट, हिसाब किताब जो कड़े हैं वो खत्म कर देने हैं, नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। पहले से बहुत हिसाब किताब बने हुए हैं। नहीं तो ज्ञान मार्ग में क्या होता है, सेंटर में तो आते हैं, फिर धीरे 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 पहचान निकलने लगती है। अच्छा आप क्या बिजनेस करते हैं? हमारा ये बिजनेस है। अच्छा आप क्या? हमारा, दोनों का मिलता जुलता है। फिर वहीं से बिजनेस भी चालू हो जाता है काम। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। आपके कितने हैं? दो हैं। लड़का लड़की, उनका रिश्ता फिर हो जाता है। वो सारा गड़बड़ हो गया, सारा अलौकिक में चले जाते हैं। वहीं से फिर कहाँ किसके काम के लिए आए थे और दूसरे रिश्ते जुड़ गए उधर ही आके। इसलिए जिस काम के लिए जहां जाते हैं उतना ही करना है, नहीं तो सारा सारी किया किराया पानी में चला जाता है। आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, बड़ी मुश्किल से तो हिसाब किताब छोड़े थे और उधर आके नया बन गया। तो हिसाब किताब चुक तो करने हैं, नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं। नेक्स्ट है आइडियल पर्सन, अर्थात जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं तो लगे पहले स्वयं को कि सचमुच हम एक आदर्श मूर्त बन रहे हैं। अपने आप को जैसे ब्रह्मा बाप बनाना है। हमारे लिए आइडियल पर्सन कौन है? ब्रह्मा बाबा है, तो उनके समान बनना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा बताओ? अभी आप भी कुछ बताओ। कर्मयोगी के टाइटल हमेशा हमको याद रखना है। और कर्मयोगी अर्थात सो सेवा और सर्व की सेवा करने वाले। उसमें कोई मान शान नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई खर्चा नहीं। सदा हल्के रहने वाले, खुश रहने वाले, मेवा खाने वाले। तो कर्मयोगी का टाइटल, उसमें याद जुड़ी हुई है, वो शत्रशाया रहेगी साथ में। नेक्स्ट, लव, बाबा से प्यार। बाबा से प्यार अर्थात फिर वो जितनी चीजें बताए उन सबसे प्यार। नेक्स्ट, मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए संकल्पों की। बैठे हैं याद में, अभी वो संकल्प आ रहा है, वही वो संकल्प आ रहा है, वो भी आ रहा है, अभी वो आ रहा है। मिक्सचरिटी नहीं, पहले से हमको टाइम निर्धारित करके रखना है कि इन संकल्पों के साथ ही हमको सेवा करनी है, मेडिटेशन करना है। नहीं तो संकल्पों की मिक्सचरिटी बहुत हो रही है। नेक्स्ट, नवीनता लानी है। बाबा ने बताया ना, तपस्या में भी नवीनता, योग में नवीनता, सेवा में नवीनता, धारणाओं में नवीनता, सोच में नवीनता, चिंतन में नवीनता, मिलने में नवीनता चाहिए, हर चीज में नवीनता चाहिए। खुशी मिलती है जब जीवन में नवीनता हो। अगर एक श्रीखा हमारी राह चलती रहती है तो फिर खुशी कम हो जाती है। इसलिए नवीनता रखनी हमेशा। नेक्स्ट, चाहिए चाहिए खत्म, कि हमको इतना पुरुषार्थ करना चाहिए चाहिए नहीं, करना ही है। बाबा ने बोला करने वालों से मिलेंगे, कहने वालों से नहीं। तो चाहिए चाहिए खत्म। नेक्स्ट, समय कौन सा आ रहा है, ऐसा भी समय आएगा तो देखना अभी समय कौन सा चल रहा है। नेक्स्ट, तपस्या का चार्ट देखना, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, 2 मिनट 3 मिनट बढ़ाते रहना है सारे दिन में, तपस्या के चार्ट को बढ़ाना है। नेक्स्ट, अंडरलाइन करना है, क्या क्या अंडरलाइन, बाबा के महावाक्यों को, जितने भी हमारे पुरुषार्थ को बढ़ावा देने के लिए जो महावाक्य हैं उसको अंडरलाइन करना है। जैसे कि आज के मूल्य में बाबा ने कहा ना, अंडरलाइन करो, बाद में उलाना नहीं देना बाप को, अंडरलाइन करो तो समय कौन सा चल रहा है। और नेक्स्ट, बेगन प्रूफ बनना है। कहाँ था आज मुख्य मूल्य में बेगन प्रूफ, हाँ स्लोगन था आज का, योग युक्त और युक्ति युक्त होकर कर्म करेंगे तो बेगन प्रूफ बन जाएंगे। और नेक्स्ट, यथार्थ योगी बनना है। तो कितनी बातें हो गई, तो ऐसे मुरली से छोटी छोटी बातें इकट्ठी करनी है, तो फिर उनको याद करना भी आसान हो जाएगा ना, वो याद बल्कि वो हमारे संस्कार बन जाएगी, अलग तरीके से सोचने के संस्कार। ठीक है, ओम शांति। प्यार से हुआ
सदा बेटा।